ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवत सातवां स्कंध पहला अध्याय और श्लोक संख्या 28 और 29 बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो हम एक ही श्लोक का उच्चारण करेंगे जो श्लोक 29 नंबर का। एवं कृष्ण भगवती माया मनुज ईश्वरे वैरेण पूत पापमानस मा पुरुर अनुचिंतया। एवं कृष्ण भगवती माया मनुज ईश्वरे वैरेण पूत पापमानस तमा पुरनुं चिंतया। एवं कृष्ण भगवती माया मनुज ईश्वरे वैरेण पूत पापमानस तमा पुरनुं चिंतया। शब्दार्थ अनुवाद आतात पर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की, कृपया अपने पीछे दोहराइए। कीट कीरा पेशस्कृता मधुमक्खी रुद्ध बंदी बनाया गया कूडयाम दीवार के छेद में तम उस मधुमक्खी को अनुस्मरण सोचते हुए संरभ भय संरभ भय योगेन अत्यधिक भय तथा शत्रुता के द्वारा विन्दते प्राप्त करता है तत् उस मक्खी का स्वरूपतां वही रूप। एवं इस प्रकार कृष्ण कृष्ण में भगवती भगवान माया मनुजे जो अपनी ही शक्ति से मनुष्य रूप में ईश्वरे परम वैरेण शत्रुता से पूत पाप मानः पापों से शुद्ध हुए तम उसको आपुहु प्राप्त किया अनुचिंतया चिंतन से। अनुवाद के तरफ पीछे दोहराइए। एक मधुमक्खी द्वारा दीवाल के छेद में बंदी बनाया गया एक क्रिया सदैव भय तथा शत्रुता के कारण उस मधुमक्खी के विषय में सोचता रहता है और बाद में मात्र चिंतन से स्वयं मधुमक्खी बन जाता है। इसी प्रकार यदि सारे बद्ध जीव किसी तरह सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण का चिंतन करें तो वे पापों से मुक्त हो जाएं। वे भगवान को चाहे पूज्य के रूप में माने या शत्रु के रूप में, उनके निरंतर चिंतन करने से उन सबों को आध्यात्मिक शरीर की पुनः प्राप्ति हो जाएगी। तात्पर्य थोड़ा लंबा है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, बीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया लीन होकर तथा मेरी शरण ग्रहण करके भूतकाल में अनेकों अनेक व्यक्ति मेरे ज्ञान में पवित्र बन गए हैं। और इस तरह उन्होंने मेरे प्रति दिव्य प्रेम प्राप्त किया है। कृष्ण के विषय में निरंतर चिंतन करते रहने के दो ढंग हैं, एक तो भक्त के रूप में और दूसरा शत्रु के रूप में। भक्त अपने ज्ञान तथा तपस्या से भय तथा क्रोध से मुक्त होकर शुद्ध भक्त बन जाता है। इसी तरह शत्रु यद्यपि कृष्ण के विषय में शत्रु भाव से सोचता है, किंतु निरंतर सोचते रहने से वह भी शुद्ध बन जाता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में अन्यत्र की गई है, जहाँ भगवान कहते हैं, अपि चेत शूद्राचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। यदि कोई अत्यंत गर्हित कर्म भी करे, किंतु यदि वह भक्ति में लगा रहता है तो उसे साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह उचित रीति से स्थित है। भक्त निस्संदेह मनोयोग से भगवान की पूजा करता है। इसी प्रकार यदि एक शत्रु सदैव कृष्ण का चिंतन करता है तो वह भी शुद्ध भक्त बन जाता है। यहाँ पर उस कीट का दृष्टांत दिया गया है जो उस मधुमक्खी का निरंतर चिंतन करने के कारण जो उसे छेद में जबरदस्ती प्रविष्ट करा देती है मधुमक्खी बन जाता है। भय बस सदैव मधुमक्खी का चिंतन करते रहने से क्रीड़ा मक्खी बनने लगता है। यह एक व्यावहारिक उदाहरण है। भगवान कृष्ण इस भौतिक जगत में दो प्रयोजनों से प्रकट होते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, भक्तों की रक्षा करने तथा असुरों का संहार करने हेतु। साधुगण तथा भक्तगण सदैव भगवान का चिंतन करते रहते हैं, लेकिन कंस तथा शिशुपाल जैसे असुर या दुष्कृति भी कृष्ण का चिंतन उन्हें मारने के उद्देश्य से करते हैं। कृष्ण का चिंतन करने से असुर तथा भक्त दोनों ही माया के पास से मुक्त हो जाते हैं। इस श्लोक में माया मनुजे शब्द आया है। जब भगवान कृष्ण अपनी मूल आध्यात्मिक शक्ति में प्रकट होते हैं संभवात्म माया, तो उन्हें भौतिक प्रकृति के द्वारा निर्मित स्वरूप ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता। अतएव भगवान को ईश्वर अथवा माया का नियंत्रक कहकर संबोधित किया गया है। वे माया द्वारा नियंत्रित नहीं होते। जब कोई असुर शत्रुतावश उनका चिंतन करता है तो वह अपने जीवन के पापों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण के विषय में किसी भी रूप में चिंतन करना, चाहे वह उनके नाम स्वरूप गुण साज सामान या उनसे संबंधित अन्य किसी रूप में हो, हर एक के लिए लाभप्रद होता है। श्रृणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना, कृष्ण का चिंतन, कृष्ण के पवित्र नामों का श्रवण या कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, ये सभी शुद्ध बनाने वाले हैं और तत्पश्चात मनुष्य भक्त बन जाता है। अतएव हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन हर एक को किसी न किसी प्रकार से कृष्ण के पवित्र नाम को सुनने तथा कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसी तरह मनुष्य धीरे धीरे भक्त बन जाएगा और उसका जीवन सफल हो सकेगा। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की भागवत कक्षा में। तो ये जो प्रसंग चल रहे हैं, वैसे तो आप सब ज़्यादातर लोग रेगुलर आने वाले हैं और परिचित हैं, फिर भी थोड़ा सा ये युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो नारद जी से प्रश्न पूछते हैं। युधिष्ठिर के राज्यसभा में भगवान ने जो है वो चेदी नरेश शिशुपाल का वध कर दिया और उसकी जो जीवात्मा है वो निकलकर भगवान के शरीर में चली गई। तो युधिष्ठिर महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति सारा जीवन जो है वो कृष्ण को गाली देता रहा, और ये कैसे संभव हो पाया कि व्यक्ति की जो जीवात्मा है वो भगवान के शरीर में कैसे प्रवेश कर गई। तो ये प्रश्न जब उन्होंने नारद जी के सामने रखा तो नारद जी उसी का उत्तर दे रहे हैं। और इससे पहले जो वो प्रसंग था कि परीक्षित महाराज ने भगवान से सुखदेव गोस्वामी से पूछा था कि क्या भगवान समदर्शी हैं, या क्या सचमुच भगवान समदर्शी होते हैं, जो पिछले कैंटो जो है उसके हिसाब से पिछले कैंटो के से ये प्रसंग आ रहा था कि वित्रासुर के वध के लिए जैसे भगवान ने उपाय बताए, वित्रासुर का वध हुआ इस तरह से। तो अब यहाँ पर जो है वो नारद जी ने पिछले कुछ श्लोकों से कंटिन्यूसली इस बात को युधिष्ठिर महाराज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान का चरित्र कैसा है, और भगवान जो है इस भौतिक जगत से परे हैं उनको भौतिक जगत की कोई चीज़ जो है वो प्रभावित नहीं करती। इसीलिए जो है वो बस आज का जो प्रसंग है उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि संघ की महिमा बताई है उन्होंने, कि उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है इसमें कि संघ करके जो मधुमक्खी, ये जो कीट कोई कीड़ा है भृंगी नाम का कीड़ा, वो मधुमक्खी के बारे में सोचता रहता है और उसके डर से वो अंदर छुपा होता है और थोड़े टाइम में क्या हो जाता है, वो स्वयं मधुमक्खी बन जाता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि इसी तरह से अपने परपट में कोई व्यक्ति अगर कृष्ण को बार बार याद करता है, उनकी कथा सुनता है, उनके बारे में सोचता है, तो व्यक्ति जो है वो शुद्ध हो जाता है और शुद्ध भक्त बन जाता है और मुक्त हो जाता है। जैसे इस प्रसंग में उन्होंने कृष्ण के जो शिशुपाल क्यों मुक्त हुए तो उसी का उत्तर जो दे रहे हैं कि शिशुपाल इसलिए मुक्त हुए कि वो निरंतर भगवान का चिंतन कर रहे थे। तो प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि भगवान का चिंतन आप दो रूप में कर सकते हो, या तो शत्रुता से या फिर भक्ति से। तो शत्रुता से भी अगर जो चिंतन कर रहा है तभी वो शुद्धिकरण होगा उसका, क्योंकि वो व्यक्ति जो है कृष्णा कॉन्शियस हो रहा है। एक्चुअली में जो टॉप मोस्ट फिलॉसफी क्या है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, कि हमें हमेशा भक्त हम माला क्यों करते हैं, भक्तों का संग क्यों करते हैं, ताकि हम हमेशा कृष्ण को याद रख सकें। तो जो चेदी नरेश शिशुपाल थे वो हमेशा वैसे ही कृष्ण को याद रख रहे थे, चाहे गाली दे के शत्रुता के रूप में ही सही, उन्होंने कृष्ण को हमेशा याद किया। इससे परिणाम क्या हुआ कि वो भक्ति जो है वो शुद्ध हो गया। और इसी श्री राधा राधिका रमण भगवान की, श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री गौर नेताय जी की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो शिशुपाल इस तरह से जो है याद करते, मतलब भगवान को जो स्मरण करते करते, चाहे उन्होंने शत्रुता के रूप में किया, वो खुद शुद्ध हो गए। तो शुद्ध होने के बाद परिणाम एक ही है, उसको भगवान का धाम मिलेगा या भगवान की जो है वो मुक्ति प्राप्त होगी। तो शिशुपाल के साथ भी इसी तरह से हुआ है। प्रभुपाद भागवतम के कई और प्रसंगों में भी लिखते हैं कि जब लोहा अगर कंटिन्यूसली अग्नि का संग करता है तो लोहा अपना धर्म छोड़ देता है, अग्नि का धर्म को अडॉप्ट कर लेता है। मान लीजिए उसको हम लोहे को अग्नि में रखते हैं और इसको किसी से को टच करते हैं तो वो जलेगा, चुभेगा नहीं, उसको जले, वो जल जाएगा उससे, क्योंकि ये लोहे ने क्या है अग्नि के धर्म को अडॉप्ट कर लिया है। तो इसी तरह से जो जो भक्त हैं या जो डिवोटी हैं या कोई नॉन डिवोटी भी है, अगर कृष्ण को तो दूसरे किसी भी तरह से वो सोचता है, चाहे वो शत्रुता के भाव में कृष्ण को याद करता है या मित्रता के भाव में, वो दोनों ही परिस्थितियों में क्या है उसका शुद्धिकरण होगा। और इसीलिए जो है वो शिशुपाल जो है उसका शुद्धिकरण हुआ। और प्रभुपाद आगे और बता रहे हैं कि कोई बहुत खराब से खराब कर्म क्यों नहीं करता, परंतु अगर वो कृष्ण भक्ति में टिका हुआ और कृष्ण को निरंतर याद कर रहा है तो निश्चित रूप से जो है वो व्यक्ति वो उसको साधु समझना चाहिए। जिसमें प्रभुपाद जो है 9वें अध्याय के 30वें श्लोक का रेफरेंस देते हैं, अपि चेत शूद्राचारो भजन्ते माम अनन्य भाग, कि व्यक्ति यदि व्यक्ति अगर कुछ गलत काम भी करता है या गलत काम होता है उससे, परंतु फिर भी वो भक्ति में लगा रहता है दृढ़तापूर्वक, तो निश्चित रूप से जो है वो व्यक्ति जो है उसको साधु समझना चाहिए। हम इसको लौकिक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए चलते हुए आप कहीं गिर गए रास्ते में, तो अगर जो गिर गया और वहीं रुक गया तो उसका विकास तो रुक जाएगा, उसको डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकता। पर गिरने के बाद, चोट लगने के बाद भी अगर वो चलने को तैयार है और चल रहा है तो निश्चित रूप से एक दिन जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। ये इस तरह से जो है वो जो भी भक्त अगर उससे कुछ गलती भी हो जाती है, उस गलती को लेकर या उस प्रॉब्लम को लेकर बैठे नहीं रहना चाहिए कि मेरे से गलती होगी, मैं भक्ति कर ही नहीं सकता। भक्ति जो है वो ऐसा अनोखा प्रोसेस है कि इसमें किसी भी व्यक्ति का जो एलिवेशन जो है वो हो सकता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि इस स्त्रियों वैश्य तथा शूद्रो तेपि यान्ति पराम गति, बताया गया कि ये जो लोग हैं स्त्री वैश्य या शूद्र या इस तरह के जो लोग हैं जो शास्त्रों को नहीं पढ़ते या धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, इन लोगों का भी उद्धार हो जाता है केवल भक्तों के संग के से या इस भक्ति के माध्यम से उनका भी उद्धार हो जाता है। तो ये इस बात को जो है हमेशा इस बात को समझना चाहिए कि भगवान के जो भक्तों का संग है और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आप हम एक और एग्जाम्पल में देखते हैं कि नारद जी का, आप नारद जी का एग्जाम्पल देखो कि नारद जी जब उनको ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया और वो दासी पुत्र बने, तो दासी पुत्र जो है उसके बाद उन्होंने उनके भक्तों का संग मिला और भक्तों का संग किया उन्होंने 4 महीने तक और उनके जो है वो उच्छिष्ट को प्राप्त किया उन्होंने, और इसी से फिर जो है दोबारा वो नारद मुनि की उस स्थिति को उन्होंने प्राप्त कर लिया। ऐसा नहीं है, ये नहीं सोचना चाहिए कि नारद ऋषि जो हैं वो इससे पहले वही जीवात्मा उसमें बद्ध जीवात्मा के अंग में थे। कई बार हमें ये लगता है कि नारद ऋषि इस तरह से नारद बने, नहीं, वो नारद पहले से थे, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं वो, ब्रह्मा जी ने उनको खुद श्राप दे दिया था और उन्होंने भी ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया था। तो जब ब्रह्मा जी ने जब उनको श्राप दे दिया तो उपबरहन नाम के एक जो है वो गंधर्व बने थे वो, और उपबरहन नाम के गंधर्व बनने के बाद जो है फिर तीसरे जन्म में जो है वो दासी के पुत्र बने और उसके बाद फिर दोबारा से जो है वो नारद बन गए, मतलब अगेन जो है अपने उस जगह पर चले गए। पर फिर भी ये एग्जाम्पल भक्तों को समझने के लिए तो है। तो कह रहे हैं कि कंस्टेंट जो है वो रिमेम्बरिंग करने से, हम निरंतर अगर भगवान का स्मरण करते हैं तो हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। तो इसलिए जैसे कि भगवान 11वें स्कंद के 12वें अध्याय के 1 और 2 श्लोक में बता रहे हैं कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी भक्ति का कोई भी अंग इतना पावरफुल नहीं है जितना भक्तों का एसोसिएशन। भगवान खुद ही कह रहे हैं उद्धव को कि न योग, न सांग, न कोई भी रिलीजियस ड्यूटी, न स्वाध्याय स्क्रिप्चर्स का अध्ययन, और न कोई तपस्या, न कोई त्याग, न कोई दान, न कोई व्रत, न कोई डीटी वर्शिप, न किसी तीर्थ यात्रा मतलब तीर्थाटन, न किसी रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करना व्यक्ति को इतना शुद्ध कर देता है जितना एसोसिएशन। तो खुद भगवान उद्धव को बता रहे हैं बात कि एसोसिएशन कितना पावरफुल है। भगवान कह रहे हैं कि कोई भी प्रोसेस मुझ तक पहुंचने के लिए इतना सफिशियंट नहीं है जितना एसोसिएशन है। एक बार भक्ति माधुरी गोविंद महाराज यहीं से बता रहे थे कि भक्तों की कृपा के बिना, भक्तों के संग के बिना अगर कोई समझता है कि मैं भगवान के धाम चला जाऊँगा तो वो ऐसे ही है जैसे कुत्ते की पूँछ पकड़ कर कोई समझता है कि मैं अटलांटिक सागर को पार कर जाऊँगा। तो हमें निश्चित रूप से जो है इसको बात को समझ लेना चाहिए कि जो भक्तों का संग है बहुत पावरफुल है और इस संग के लिए जो है, बट संग जो है वो राइट डायरेक्शन में होना चाहिए और सही भक्तों का होना चाहिए। और इतिहास में इस तरह से जो है बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं जब कई लोगों ने भगवान का संग करके अब उच्च स्थिति को भगवान के भक्तों का संग करके प्राप्त करके उच्च स्थिति को प्राप्त किया है, चाहे वो असुर रहे हों या पक्षी रहे हो या कोई जानवर रहा हो, सबने जो है वो किसी न किसी प्रकार से अगर उनको संग मिला है तो उन्होंने जो है भगवान को प्राप्त कर लिया है। तो उसमें जो प्रसंग आता है कि भगवान कह रहे हैं कि कोई भी सीरियस फिलॉसफी को समझने वाला, मतलब बहुत गंभीर दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने वाला भी, गंभीर दार्शनिक तत्वों को समझने वाला व्यक्ति भी मुझे बांध नहीं सकता जितना कि डिवोटीज के एसोसिएशन में, डिवोटी एसोसिएशन में भक्ति करने वाला जो आदमी है वो मुझे बांध सकता है। ये भगवान खुद जो है ये उद्धव को उसी प्रसंग में आगे कह रहे हैं। और भगवान फिर एग्जाम्पल देते हैं उद्धव को कि गोपियों ने मुझे इसी तरह से प्राप्त किया क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको शहरों का की चीज़ें नहीं पता, वो जो है बहुत अच्छी सोसाइटी गर्ल के नाम से नहीं समझी जाती थी, बट फिर क्या है कि उनका जो है वो एसोसिएशन था मेरे साथ, सीधा सीधा जो है वो एसोसिएशन था। इसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने मेरे लिए जो है ऐसा प्रेम उत्पन्न कर लिया और मेरे को बांध लिया। हम उसमें देखते हैं भागवतम में और जो कई और शास्त्रों में आता है, आप वृत्रासुर का प्रसंग देखिए। वृत्रासुर को जो है महाराज चित्रकेतु के रूप में उनको किनका संग मिला, अंगिरा का और नारद ऋषि का, और इस तरह से जो है उन्होंने भगवान की उच्च स्थिति को प्राप्त कर लिया। फिर जो है उन्होंने जो है वो अलग बात है कि एक मजाक किया और फिर वृत्रासुर बने, तो वो एसोसिएशन और भक्ति उनकी तब भी नहीं गई। वृत्रासुर बनने के बावजूद भी जो है वो भगवान का स्मरण किया उन्होंने और भगवान को याद रखा, और इसी रूप में जो है फिर उन्होंने भगवान को प्राप्त भी कर लिया। फिर प्रहलाद देखिए, प्रहलाद दैत्य के असुर कुल में थे, वेत्रासुर, प्रहलाद, बलि महाराज, ये सब असुर कुल में थे, तो इन सब ने भगवान को प्राप्त किया। आप सबको जानते प्रहलाद महाराज ने किसका एसोसिएशन लिया, नारद जी का, गर्भ से उन्होंने एसोसिएशन लेना शुरू कर दिया और जो है इस तरह से उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। बलि महाराज, उन्होंने अपने दादा जो है प्रहलाद महाराज का एसोसिएशन लिया था, हालांकि उनके पिता जो विरोचन थे बलि महाराज के पिता, वो भी बहुत बड़े दानी थे, बहुत बड़े भक्त तो नहीं थे, बड़े बहुत बड़े दानी थे, वो इतिहास के कुछ उच्च नेता जो है वो दानी लोगों में उनका नाम आता है, जैसे महाराज सीधी, विरोचन, ये सब उन दानी लोगों में थे। तो बलि महाराज के जो पिता थे वो विरोचन, परंतु बलि महाराज का ज़्यादा सन जो है अपने दादा के प्रहलाद के साथ रहा। तो बलि महाराज ने जो है इसी तरह से भगवान के प्रति ऐसी उत्कट प्रेम भक्ति प्रकट कर ली, और बाद में जो है उन्होंने भगवान वामन का भी सन किया। इस तरह से प्रभुपाद लिखते हैं कि उन्होंने छोटे से समय में भगवान वामन का भी इतना अच्छा संग प्राप्त कर लिया। फिर बाणासुर, बाणासुर कौन थे, ये बलि महाराज के पुत्र थे बाणासुर। आपने कृष्णा बुक में पढ़ते होंगे, भागवत दसवें स्कंद में ये प्रसंग आता है कि बाणासुर जो है वो शिव जी के साथ जो है उनका उनकी कितनी भक्ति करी थी उन्होंने, और उनका जो है अपने जो फादर थे बलि महाराज उनका भी एसोसिएशन मिला था उन्होंने। तब जब भगवान ने उनके 1000 हाथ काट दिए, जब उनको आप उनकी स्थिति पर ला के खड़े कर दिया, तो समझ गए, फिर उन्होंने भगवान का भी एसोसिएशन लिया, बाद में शुद्ध भक्त बन गए भगवान के बाणासुर। और इसी तरह वृषपर्वा जो जिनकी माता ने छोड़ दिया था, ये भी भागवत में प्रसंग आता है वृषपर्वा का, जिनकी माता ने छोड़ दिया था उन्हें जंगल में ही, उसको बाद में जो है एक पक्षी ने और एक मुनि ने, एक ऋषि ने पाला उनको। तो इस तरह से जो है वो धीरे धीरे जो है इनका जो उस ऋषि जो थे वो भगवान के भक्त थे, तो उसके बाद उन्होंने जो है उन्होंने भगवान की भक्ति प्राप्त कर ली। ये इतिहास से कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसे हम, जैसे मैदानव जो है जिसने इस सारे जितने भी ये आर्ट्स हैं इसमें भक्ति के, अच्छा जितने भी आर्ट्स हैं ये सारे का जो है फॉर्मेशन इस मैदानव ने किया है, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने उसने बनाया है मैदानव ने। अब हम हैरान हो जाएंगे वो दानव था परंतु उसने किस किस चीज़ की रचना की है। पांडवों का महल जो था इंद्रप्रस्थ की राजधानी उसने बनाई थी मैदानव ने, क्योंकि भगवान ने और फिर अर्जुन ने उसकी रक्षा की थी, कब, जब खांडव प्रस्थ को भगवान जला रहे थे तो मैदानव जो वहीं पर रहता था तो उसकी रक्षा करी थी भगवान ने, भगवान के कहने पर अर्जुन ने छोड़ दिया था जो है उसको मैदानव को। तो मैदानव जो है अपने आप को कृतज्ञ महसूस कर रहा था कि मैं इनके लिए कुछ करूँगा, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे अपनी तरफ से मुझे रख लो, मैं सारे कौरवों को मार दूंगा। उन्होंने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना करो कि भगवान ने कहा आप इनके लिए एक बहुत सुंदर जो है महल बना दो जो कि हस्तिनापुर से भी सुंदर हो। तो जब इंद्रप्रस्थ जब बनी थी तो वो हस्तिनापुर से भी सुंदर था वो, तभी उसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया था। इंद्रप्रस्थ का मतलब जो है जहाँ इंद्र जैसे लोग रहते हों, इंद्रप्रस्थ का मतलब अमरावती जैसे है, अमरावती को इंद्रप्रस्थ बोला जाता है जहाँ देवता निवास करते हैं, तो इसीलिए उसका पहले उसका नाम खांडव प्रस्थ था, जो बंटवारा हुआ था तब उसका नाम खांडव प्रस्थ था। भक्त तो इसने इतना सुंदर बना दिया उसको कि आप देखिए कि वो जो है दुर्योधन उसी भ्रम में पड़ गए, वो पानी को उन्होंने जो है सतह समझ लिया तो गिर गए। ये मैदानव की का करिश्मा था कि उसने इतना सुंदर महल बनाया था, या ऐसी वहाँ की जो राज्यसभा थी हर कुछ बहुत एक्सीलेंट था वो। जो मैदानव है वो अतल लोक में रहते हैं, एक्चुअली अतल लोक जो है वो मैदानव की है, जो सबसे ऊपर की है, नीचे का जो सबसे ऊपर का है पृथ्वी के नीचे का जो लोक है अतल लोक, ये मैदानव का लोक है एक्चुअली में। तो और उसके नीचे जो है वो बलि महाराज का है सुतल लोक। तो मैदानव, और उसके बाद विभीषण, विभीषण ने हनुमान जी का संग प्राप्त किया तो क्या हुआ, उन्हें राम जी की शरण मिल गई। उन्होंने लंका में कुछ समय के लिए हनुमान जी का जो है एसोसिएशन लिया था कुछ समय के लिए, और उसके बाद उनको परिणाम क्या हुआ कि भगवान राम की भक्ति और भगवान राम का शरण मिल गया उनको। हनुमान जी खुद, हनुमान जी बंदर हैं, जामवंत बंदर हैं, सुग्रीव बंदर हैं, पर इन सब को भी भगवान एसोसिएशन की वजह से ये भगवान के जो है वो इनकी इन सबकी मुक्ति हो गई और ये भगवान की भक्ति में एटर्नल हो गए, शाश्वत हो गए। बल्कि हनुमान को लिए तो भाई बोला जाता है कि हनुमान जो है चिरंजीवी हैं, आठ लोग जो चिरंजीवी माने जाते हैं, सात लोग ऑफिशियली हैं, एक मार्कंडेय ऋषि भी हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैता चिरंजीविन, ये सात लोग जो हैं चिरंजीवी हैं, तो उसमें हनुमान जी भी हैं। तो किस कैसे हुआ ये, केवल एसोसिएशन के बल पर। और आपको बड़े आश्चर्य होगा कि हनुमान जी जो हैं वो राम जी के धाम में नहीं रहते, साकेत धाम में नहीं रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो किम पुरुष वर्ष में। किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी जो है वो हमेशा भगवान का सदा कीर्तन करते हैं और एसोसिएशन लेते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। जब राम जी ने कहा कि तुम साकेत में आके रहो, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे वहाँ क्या प्रभु, मैं आपके नाम यहाँ ज़्यादा अच्छा है कि मैं आपके नाम इसका कीर्तन करूँगा और यहाँ मुझे आपकी कथा सुनने को मिलेगी। तो वो जो है वो हमेशा वहाँ रहते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं और भगवान के नामों का अभी भी जप करते हैं। तो ये जो लोग हैं एक्चुअली में, तो ये इन्होंने ये स्थिति कैसे प्राप्त की, केवल एसोसिएशन की वजह से। गजेंद्र हाथी ने कैसे प्राप्त किया, ये हाथी पिछले जन्म में जो है वो भक्त था, वो गंधर्व था, तो उसने उस समय जो है वो भक्तों का संग किया था, परंतु अगले जन्म में भी गजेंद्र को वो जो है वो चीज़ें मिली। वो खुद भूल गए थे, उनको एक ऋषि ने साफ दे दिया था तो खुद भूल गए थे, परंतु बाद में जब डूबने लगे, जब ग्रह उनको अंदर ले जाने लगा, तो उनको याद आ गया और भगवान ने उनको याद दिलाया और तब उन्होंने भगवान की प्रार्थना की और फिर तब भी बचा लिए गए। फिर जटायु, जटायु को भगवान का एसोसिएशन मिला, खुद भगवान राम ने उनको अपना एसोसिएशन दिया, संग अपना संग दिया भगवान राम ने उसको जटायु को। और कुब्जा, कुब्जा को देखिए, भगवान ने कुब्जा का उद्धार कर दिया, थोड़े समय का एसोसिएशन था, कुछ क्षण के लिए, और भगवान ने कुब्जा को इतना सुंदर बना दिया और फिर उसका उद्धार हो गया। फिर जवाली मुनि हैं, इसका भी इनका भी वर्णन आता है। तो जवाली मुनि हालांकि बहुत जो है वो घमंडी थे अपनी तपस्या की वजह से कि मुझे, मैं बहुत बड़े तपस्वी हूँ, बट एक भक्त जो था वो धर्मव्याध, उन्होंने उनके घमंड को चूर कर दिया। जब उनका एसोसिएशन मिला उन्हें, वो धर्मव्याध किस तरह के भक्त थे, ये मांस काटते थे, और जब इनका एसोसिएशन लिया इस जवाली मुनि ने तो शुद्ध हो गए और फिर शुद्ध भक्त बने भगवान का। ये सब स्टोरीज हैं अलग अलग अलग, बहुत ये सब स्टोरी, इसलिए टाइम बहुत इसमें लगेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। इस तरह से जो है भागवत में अनेक तरह का इस तरह से वर्णन आता है कि किस व्यक्ति ने एसोसिएशन के द्वारा किस तरह से भगवान को प्राप्त किया। फिर नाग पत्नियाँ, कितने समय उनको भगवान का वो मिला, कुछ समय के लिए भगवान का एसोसिएशन मिला उन्हें। कालिया को सीधा सीधा भगवान का एसोसिएशन मिला, भगवान के चरण को प्राप्त किया उसने। और ब्राह्मण पत्नियां, ब्राह्मणों की पत्नी ने जो है कितने समय एसोसिएशन लिया भगवान का, बहुत बहुत कुछ समय के लिए। तो इतना पावरफुल है भक्तों से जो है भक्तों का संग करना। इसलिए भगवान स्वयं ही बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो ट्रांसडेंटलिस्ट है, कोई भी जो साधक है, वो धर्म के किसी भी अंग का चाहे पालन कर रहा है, परंतु अगर वो सही भक्तों का संग नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। आप समझो कि हम भगवान को हमेशा कैसे याद रख सकते हैं, कैसे याद रखोगे, हम भक्तों के संग में होंगे तभी इसमें याद रखेंगे। अगर हम भक्तों के संग में नहीं हैं तो फिर हम भगवान को कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि भगवान के संग में अगर भक्तों के अगर हम संग, अब कंस्टेंटली चैंटिंग नहीं कर सकते, हमेशा आप चैंटिंग नहीं करोगे, हमेशा कोई रीड पढ़ भी नहीं सकता, पर भक्तों के संग में हमेशा रहा जा सकता है। और ये सारे प्रोसेस जो है किसी न किसी भक्ति का कोई ना कोई अंग जो है हम उसका पालन करते रहेंगे। तो हमें सिंसियरली ट्राई करना चाहिए कि हम ऐसे व्यक्ति और ऐसे भक्त का संग करें जिसके अंदर स्पिरिचुअल वैल्यू जो बहुत महत्व देते हैं, जिनके जीवन में जो है स्पिरिचुअल आइडियल्स जो आध्यात्मिक तत्व हैं और आध्यात्मिक चीज़ें हैं उनके लिए वैल्यू करती हैं। सो कॉल्ड भक्त भी बहुत होते हैं जो तथाकथित भक्त, जो भक्त की तरह लगते हैं, भक्त की तरह दिखते हैं, बहुत अच्छा तिलक है, बहुत अच्छा धोती कुर्ता है, बहुत अच्छा सीखा है और सब कुछ आपको भक्त 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 की तरह दिखेगा, परंतु जो है वो कई बार भक्त नहीं होते हैं। मिलिट्री के डेस में आतंकवादी भी होता है। तो ये घुसपैठ यहाँ भी है। हमें इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें राइट पर्सन का जो है एसोसिएशन लेना है। चतुर्विधा भजन्ते माम गुना सुकृत लोग, ऊर्जा भगवान कह रहे हैं, तो चार तरह के लोग भजन मेरा करते हैं। तो मंदिर में भी जो लोग आते हैं वो हर तरह के लोग आते हैं, उनका उद्देश्य अलग अलग होता है। सब भजन करने नहीं आते यहाँ, आप समझ गए, यहाँ सब भजन करने नहीं आए हैं। कोई अपने मतलब के लिए आया है, कोई पैसे कमाने, किसी किसी का कुछ और मतलब है, किसी का और मतलब है, कोई कुछ कोई किस लिए आता है, कोई मान लीजिए कोई 4-6 वीक से आ रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ और देखने आता है, कुछ और करने आता है, कोई सेटिंग करने आता है, वॉट एवर इट इज। तो सबका अलग अलग उद्देश्य है। पर तो हमें ये खुद तय करना पड़ेगा कि हमें कैसे लोगों का संग करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जो है उसको, जो अमेरिका का राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन, जिनके नाम पर वॉशिंगटन शहर है, वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। वो तो वॉशिंगटन एक बहुत बड़ा योद्धा भी थे वो, और सेनापति थे। उन्होंने जो है अंग्रेजों को वहाँ से भगाया था। एक्चुअली में वहाँ भी अंग्रेजों का साम्राज्य था पहले, US वगैरह पर। तब उन्होंने जब भगाया था तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि जो है कि हमें ऐसे व्यक्तियों का संग करना चाहिए जो हमें, जिनकी चरित्र बहुत ऊँचा हो और जिनके जो हाई वैल्यू रखते हों, जिनके जीवन मूल्य जो हैं बहुत ऊँचे हों, ऐसे व्यक्ति का हमें संग करना चाहिए। वो एक, आप, वो कोई भक्त नहीं था, वो एक सेनानायक था, एक राष्ट्रपति था, पर उसके उसके उसने भी इस बात को रियलाइज किया कि व्यक्ति को कैसे लोगों का संग करना चाहिए। तो जिस व्यक्ति की स्पिरिचुअल वैल्यू बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है जिसके जीवन में, हमें उसी ऐसे ही भक्तों का संग करना चाहिए। नहीं तो क्या है कि बहुत आसानी से जो है हम इस चीज़ से दूर हो जाएंगे। कि जरूरी नहीं है कि हम भक्ति में आते हैं बड़े सारे चीज़ें करते हैं, मंदिर में भी आते हैं बड़े सारे, हम रोज़ मंदिर में कई बार विजिट करते हैं, कोई वीक में करता है, कोई वीकली करता है, कोई जो मंथली करता है। तो परंतु क्या है कि प्रभुपाद लिखते हैं कि मंदिर में विजिट करने का मतलब भक्तों से सुनना है, भक्तों का संग लेना है, भक्तों से सुनना है, और जो है इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है उनको और उनकी सेवा करनी है। ये दो इम्पोर्टेंट काम बताए प्रभुपाद ने। किसी भी तीर्थ स्थान का, किसी भी धार्मिक स्थल पर हमें भक्त जो है हम अगर विजिट करते हैं तो हमें दो उद्देश्य ध्यान में रखना चाहिए। हम ध्यानपूर्वक श्रवण करें भक्तों से और फिर उनकी सेवा करें। तो हम मंदिर में आकर भी हम कोई तीसरा डिफरेंट उद्देश्य बनाते हैं अगर हम, तो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। तो फिर तो निश्चित रूप से हम कभी धर्म को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि और ये भी नहीं है कि ठीक है कि ऐसा नहीं है कि आप मंदिर में आते हो भगवान का दर्शन करते हैं तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, निश्चित रूप से, क्योंकि भगवान जो कह रहे हैं कि उनका दर्शन अमोघ है, वो भगवान का दर्शन खाली नहीं जाएगा, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। परंतु अगर हम ये करेंगे तो बहुत पावरफुल है डिवोटीज एसोसिएशन। भक्ति के सारे प्रोसेस जो है अपने आप में बहुत अच्छे हैं और भक्ति को एडवांस, व्यक्ति को उन्नत करने वाले हैं, परंतु जो एसोसिएशन है डिवोटी का वो मोस्ट पावरफुल है। जैसे हम कहते हैं कि जो ओम, जो प्रणव अक्षर है, उसका भी उच्चारण भगवान का नाम है। कई और मंत्र हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी भगवान का जो है वो मंत्र है। परंतु हम क्यों जोर देते हैं लोगों को कि आप हरे कृष्ण महामंत्र करो, क्योंकि ये एक्सप्रेस एलिवेटर की तरह काम करता है। तो इसी तरह से जब हम भक्ति के जब दूसरे नियमों का पालन करते हैं, परंतु अगर हम डिवोटी एसोसिएशन नहीं करते तो उन नियमों का हम ज़्यादा समय तक पालन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए डिवोटीज एसोसिएशन को करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे जो है वो टॉप मोस्ट एक डिवोटी के लिए क्या चीज़ है बताइए, से टॉप मोस्ट एटीट्यूड एक डिवोटी का क्या होना चाहिए। टॉप मोस्ट एटीट्यूड क्या होना चाहिए एक डिवोटी का अगर मंदिर में रहता है तो? सेवा करना। इसमें लिखा जाता है इट्स टू सर्व इन ऑल सिचुएशन विथ कंप्लीट फेथ इन गॉड। कि हर परिस्थिति में हमें मुझे भगवान की सेवा करनी है। जो मठा में रहने वाले लोग हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं, उसके उसके अंदर ये बात अंदर जाना चाहिए कि मुझे किसी भी परिस्थिति में भगवान की सेवा करनी है। मेरे साथ कोई भी परिस्थिति, आउटर परिस्थिति कोई भी हो, विथ कंप्लीट फेथ, पूरी जो है वो फेथ के साथ हमें सेवा करनी है। ये चीज़ें कहाँ से आती है? कह रहे हैं ये चीज़ें केवल एसोसिएशन के थ्रू आएगी। जब हम भक्तों का संग करेंगे तभी ये चीज़ हमारे अंदर आएगी। अगर हम भक्तों का संग नहीं करते हैं तो ये बात हमारे अंदर नहीं आएगी और हम कंप्लीट फेथ से जो है भगवान की सेवा नहीं करेंगे। क्योंकि आप देखिए कि डिवोटी का बिजनेस क्या है, क्या बिजनेस है डिवोटी का? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, हमेशा कृष्ण को याद करना। तो हमेशा कृष्ण को कैसे याद रख सकता है वो, जब डिवोटी के एसोसिएशन में होगा और उन डिवोटीज के एसोसिएशन में होगा जो सांसारिक बातें नहीं करते हैं, मंदिर में आकर भी असत्संग करते हैं। हम विजिट करते हैं मंदिर में पर यहां भी आके असत्संग करते हैं। और कैसा चल रहा है, जो प्रभु जी लोग जो लगे हुए हैं, जो बेचारे डिवोटी, उसको भी हम मेटेरियली इंड्यूस करने का प्रयास करते हैं। और आपके घर परिवार का कैसा चल रहा है? अरे अच्छा खासा भगवान के मंदिर में बैठा है अगला, सब कुछ उसका ठीक ही चल रहा होगा। भगवान के मंदिर में ठीक नहीं है तो कहाँ ठीक रहेगा वो। मैं धर्मराज प्रभु को कई बार पूछता, प्रभु जी आप कैसे हो? तो प्रभु जी मैंने बड़ा एक्सपेक्ट आंसर दिया, कह रहा है सब कुछ बढ़िया है, भगवान के मंदिर में ठीक नहीं रहूंगा तो और कहाँ ठीक रहूंगा। तो बिल्कुल परफेक्ट है ये कि अगर हम यहाँ भी ठीक नहीं है, अगर यहाँ भी हम कुशल नहीं है तो हमारे लिए कहीं भी कुशलता जो है वो असंभव है हमारे लिए। तो ये क्वेश्चन अपने आप में गलत है कि जो मंदिर में डिवोटी, जो मठ में रहने वाले डिवोटी हैं जो है उनसे ये पूछना, वो है ही कुशल तभी मंदिर में भगवान के शरण में है, भगवान के संरक्षण में है वो। तो हमें एक्चुअल में ऐसे जो डिवोटी हैं उनको ही इस तरह से जो है प्रलोभ खींचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो ये एक्चुअली में क्या है कि जो इतना सब कुछ सुनने के बाद, इतनी कथा सुनते हैं हम, इतना सब कुछ सुनते हैं, इतना पढ़ते हैं, फिर भी व्यक्ति का जो भौतिक आकर्षण है वो बना रहता है, फिर भी भौतिक आकर्षण बना रहता है। हम बाहर की चीज़ों का तब भी प्रेज करते हैं, हम बाहर के जीवन हमें तब भी आकर्षित करता है, हम घर जाते हैं तो वहाँ के हो जाते हैं, पर जैसे ही गए पता रिमोट हाथ में आ जाता है, कोई बात नहीं बहुत देर कर लिया तो थोड़ी देर देखूं संसार में क्या हो रहा है, पता चला देश में क्या हो रहा है, मुझे पता ही नहीं। भाई तू तो मंदिर में रहते हैं, उनको कुछ नहीं पता, मुझे भी तो पता होना चाहिए कि संसार में क्या हो रहा है। तो हम इस तरह से जो है अपने आप को माया में लेके चले जाते हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर हम सही डिवोटी के संरक्षण में नहीं हैं और कई सही डिवोटी के एसोसिएशन में नहीं हैं तो व्यक्ति का भटकना बहुत ईजी है, बहुत आसानी से जो है वो इस तरह से जो है वो इस मार्ग से भटक जाएगा। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम डिवोटी का एसोसिएशन कैसे करते हैं बताइए? जैसे हम लोग बाहर से आते हैं और मंदिर में आते हैं तो हम डिवोटी का एसोसिएशन कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं? क्या डिवोटी का एसोसिएशन का मतलब है कि डिवोटी के साथ रहना, उनके कमरे में रहना, रूम शेयर करना, क्या ये डिवोटी एसोसिएशन है? फिर क्या है? उनको ध्यानपूर्वक सुनना। भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि अटेंटिवली हियर करना उसको, ये बहुत जरूरी है कि हम उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुने। जब बहुत ध्यानपूर्वक हम डिवोटी को सुनेंगे तो हमें दो बातों का रियलाइजेशन होगा। वो दो बातों किस बात का रियलाइजेशन होगा कि भगवान जो है वो बहुत महान है। द कृष्णा इज ऑल पावरफुल एंड ऑल ग्रेटफुल, और ये संसार बहुत तुच्छ है और मैं उसमें सबसे तुच्छ प्राणी हूँ। अगर हम यहाँ आकर डिवोटी के एसोसिएशन में भागवत की कथा सुनते हैं और बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो हमें ये दो रिलेशन होगी, क्या कि भगवान बहुत महान है और ये संसार बहुत तुच्छ है और मैं उस संसार का एक बहुत तुच्छ प्राणी हूँ। तो अगर हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो ये रियलाइजेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें जो इस, और सबसे बड़ी बड़ी बात बताई गई है कि कृष्णा कॉन्शियस के जितने भी चीज़ें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, भक्ति के जितने भी अंगों का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ये डिवोटीज एसोसिएशन, सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। और आप देखिए कि प्रभुपाद के भागवत गीता में या भागवतम में जगह जगह पर जो है हर जगह ये लिखा जाता है कि आप भक्तों के संरक्षण में रहें, भक्तों के जो है कृपा से कोई भगवान को रियलाइज कर सकता है। इस तरह से हर तीसरे चौथे पन्ने में प्रभुपाद ने इस तरह से लिखा है डिवोटी एसोसिएशन के बारे में। तो हमें इस बात का पूरा रखना चाहिए कि हम इस डिवोटी एसोसिएशन में जब आते हैं तो असत्संग ना करें। और प्रभु जी घर गृहस्थी कैसे चल रही है, कैसा चल रहा है, बाहर वाले कैसे हैं, बड़ी सारी दुनिया भर की बातें पूछते हैं। डिवोटी से दूसरे क्वेश्चन पूछने चाहिए, क्योंकि हम जिस मेटेरियल हम भौतिक उसमें चेतना में होते हैं तो हम भौतिक प्रश्न पूछते हैं फिर। तो निश्चित रूप से जो हम यहाँ आने का मतलब यह है, डिवोटी एसोसिएशन देने का मतलब है कि डिवोटी से ज़्यादा जो है वो स्पिरिचुअल क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। स्पिरिचुअल बातों से ज़्यादा मतलब रखें डिवोटी एसोसिएशन में। यहाँ भी वैसे बात बता नहीं रहा हूँ आपको, ऐसे बोलते हैं वो भक्त को मैंने ऐसे देखा था, दूसरों को डिस्कस मत करिए। अगर आपने दूसरे को डिस्कस कर लिया इसका मतलब आपने अपराध कर लिया। ये भी डिस्कस नहीं करना है कि मैंने उसको ऐसे करते हुए देखा था। ये पूरा संसार जो है वो दोषों से भरा हुआ है। हर व्यक्ति में दोष दिखेगा, हर व्यक्ति में दोष है और हम उससे कोई अछूते नहीं हैं। तो हर व्यक्ति में दोष है तो दोष देखने का प्रयास मत करिए। ये दोष तो हमें हर जगह दिख जाएगा, हर व्यक्ति में दिख जाता है। उसके गुणों को देखने का प्रयास करिए, उस व्यक्ति में गुण क्यों क्या है। वो भक्ति में टिका हुआ है बहुत बड़ी बात है। 20 साल से 25 साल से कोई व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहा है और टिका हुआ है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उसके उस गुणों को देखना चाहिए हमें, ये नहीं देखना चाहिए उस चीज़ में कमी है। कमी तो हर व्यक्ति में रहेगी और हर व्यक्ति में है। ये चीज़ें जो है देखकर हम अपनी भक्ति खराब करते हैं, हमारे अंदर जो है वो नेगेटिविटी आती है। अगर मान लीजिए आप भक्त में मान लीजिए आपने चोरी करते भी देख लिया किसी भक्त को, तब भी हमें समझना चाहिए कृष्ण मुझे ये दिखा रहे हैं कि तुझे ऐसा भक्त नहीं बनना है। हमें यह समझना चाहिए कि तू ऐसा भक्त बनना, ये नहीं कि हम उसको जो है ब्रॉडकास्ट करें कहीं जा करके। आप समझ रहे हो, हमारे प्रेग्नेंट प्रभु जी बताते कि हमारे घर में अगर कोई व्यक्ति हमारे घर में कोई लड़की है, कोई स्त्री है, कोई व्यक्ति है जो बहुत खराब है, या मान लीजिए कोई शराब पीती है, तो क्या हम दूसरों को बताते हैं जा करके कि मेरी बेटी शराब पीती है? बड़े चुपके से छुपाते हैं, बात पता नहीं लगनी चाहिए किसी को। हम डिवोटीज के अंदर जब फॉल्ट देखते हैं तो उसको क्यों बताते हैं दूसरों को? ये हमारी फैमिली है, वो व्यक्ति प्रयास कर रहा है, हर व्यक्ति बीमार है, वो प्रशुद्ध ठीक होने का प्रयास कर रहा है व्यक्ति, हो जाएगा भगवान की कृपा होगी तो, पर आपका तो कुछ नहीं होने वाला है। जो व्यक्ति कुछ नहीं करता वो आलोचक बन जाता है, निंदा करता फिरता है हर जगह पर। जैसे बताते हैं बाहर कि जो व्यक्ति किसी जिस व्यक्ति को कोई काम नहीं मिलता वो प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है, वो प्रॉपर्टी डीलर की दुकान खोल लेता है। तो जिसके जिस व्यक्ति जो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं वो भक्ति नहीं कर पाता, खुद प्रैक्टिस नहीं कर पाता, तो भक्तों की निंदा करना शुरू कर देता है। अरे इसके लिए आए थे आप, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, या क्या करने आए थे और क्या करने लग गए। तो यहां आकर भी जो है इस मेंटेलिटी से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम जो है ऐसे डिवोटी के साथ रहे हैं जिनका जो है स्पिरिचुअल वैल्यू और स्पिरिचुअल जो भक्तों के लिए जो भक्तों की चर्चा कर भक्तों की और भगवान की चर्चा में या इस तरह की चर्चा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसे भक्तों के साथ बैठना चाहिए, ऐसे भक्तों के साथ चर्चा करना चाहिए, तभी जो है वो एक दूसरे से आदान प्रदान होगा। नहीं तो अगर हम और दूसरी तरह से करेंगे तो बहुत खराब स्थिति हो जाएगी हमारी, हम खुद भक्ति से जो है वो बाहर चले जाएंगे। तो फिर जो मैं पूछ रहा था आपसे कि क्या एक रूम में रहना, एक साथ रहना, ये एसोसिएशन होता है? बपू जो है बपू संघ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वाणी का संघ करना, क्योंकि आप देखिए इस्कॉन में प्रैक्टिकली एक गुरु के 5,000 डिसाइपल हैं, वो अपने डिसाइपल का नाम भी नहीं जानते, ये फैक्ट है। कई गुरु हमारे इस्कॉन में बहुत सारे गुरु हैं जो अपने डिसाइपल का नाम नहीं पता उनको और पहचानते भी नहीं हैं, तो उसका उद्धार कैसे होगा? तो उन्होंने जो सिस्टम दिया है उसको हम उसको फॉलो करें, जो उन्होंने जो शिक्षा गुरु या जो उसमें उन्होंने उसका सिस्टम दिया है, हम उस प्रोसेस को अगर फॉलो करेंगे और हम सिंसियर होंगे तो गुरु हमें जान जाते हैं। अगर हम भक्ति में उन्नत हैं तो व्यक्ति जो भक्त को जो है वो गुरु जो है पकड़ लेता है कि ये व्यक्ति भक्ति में बहुत उन्नत है, स्पिरिचुअली पकड़ लेते हैं गुरु के, और फिर आपको पहचान भी लेंगे। पर हम स्पिरिचुअली हम कुछ ग्रोथ तो करें, हम स्पिरिचुअली कुछ दिखाएं तो सही, तो वो इम्पोर्टेंट है कि हम स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखाएं। परंतु इन सब में बहुत ज़रूरी है कि हम सावधानी भी रखनी चाहिए। और सावधानी क्या है कि हम ऐसे भक्त से ना संग करें जिसके अंदर बहुत नेगेटिविटी होती है, जिसके अंदर बहुत नेगेटिविटी भरी भरी हुई है, जो हमेशा नकारात्मक बातें करता है या नेगेटिव बातें करता है। क्या देखा, यहाँ भी ऐसे देखते हैं, वहाँ भी ऐसे देखा, तो शुद्ध स्थिति तो कहीं भी नहीं है। ये कोई भी ये नहीं कह रहा कि यहाँ सब कुछ परफेक्टली 100% ठीक होता है, बट निश्चित रूप से 100% परफेक्शन लेवल पर काम करने का प्रयास करते हैं। एक बहुत अमीर व्यक्ति थे जो पहले इस्कॉन में भी आते थे, बहुत अमीर व्यक्ति थे, अभी भी हैं वो व्यक्ति, बसंत विहार में रहते हैं और बहुत अमीर व्यक्ति हैं, बहुत कई फैक्ट्रियाँ हैं। तो मैंने उनसे एक बार पूछा कि आप कैसे, आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस ने कैसे अट्रैक्ट किया, तो करते कि मैं, आप जानते हो कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मैं कितना अमीर व्यक्ति हूँ, तो मेरे पास ना बहुत लोग आते हैं दान मांगने के लिए, उस संस्था ये संस्था, कहते हैं ऐसा कोई दिन नहीं होता जब मेरे ऑफिस में एक दो संस्था के लोग मांगने नहीं आते, और मैंने बहुतों संस्था में जो है विजिट किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि परंतु मैं ये तो नहीं कहता कि इस्कॉन 100% परफेक्ट है, पर जितनी परफेक्शन लेवल पर इस्कॉन काम कर रहा है, मैंने संसार में आज तक किसी संस्था को इतने परफेक्शन लेवल पर काम करते हुए नहीं देखा है। और कह रहा इसी चीज ने मुझे अट्रैक्ट कर लिया कि जो है कितनी परफेक्शन लेवल पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं कम से कम। तो कहने का मतलब है कि ये भौतिक जगत में, इस संस्था भौतिक जगत में स्थित है, हम लोग जो बाहर से हैं भौतिक जगत से आते हैं काम करने के लिए, तो इनमें वो चीज़ें हमारे जो भौतिकता है वो यहाँ भी निकल के आएगी। तो हमें इससे नहीं नापना चाहिए कि ये संस्था खराब है कि अच्छा है। आप किसी पर्सनल व्यक्ति से मत जज करो कि ये पूरी चीज़ खराब है, हम संस्था को उसके लिए दोष नहीं दे सकते। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम एक तो इस नेगेटिव, जो ऐसी इस तरह के जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहने का प्रयास करें, और नेगेटिव भक्तों से जो है दूर रहें और उनसे बातचीत करने का प्रयास ना करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे एक कहावत है कि एक जो सड़ा हुआ एप्पल है, एक रोटेन एप्पल जो है वो सारे एप्पल को ख़राब कर देता है। राधानाथ महाराज अपनी एक बुक में लिखते हैं कि इवन एक जो है वो एक सही जो है वो एक नेगेटिव भक्त जो बहुत सीरियस रूप से नेगेटिव है वो पूरे कम्युनिटी को ख़राब कर सकता है, ही कैन स्पॉइल द होल ऑपरेशन। इसीलिए ऐसे डिवोटी को, ऐसे भक्त को इमिडिएटली बाहर करना चाहिए या उसके संग से दूर हो जाना चाहिए जिसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है। और फिर कहा जाता है कि हमें ऐसे भक्तों का और ऐसे लोगों का भी संग नहीं करना चाहिए जिस जो हमेशा अपने मेटेरियल लाइफ के लिए चिंतित रहता है, चाहे वो भक्त क्यों नहीं है। मेरे घर का काम नहीं हुआ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा घर नहीं बना, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, अगर सारी जीवन जो है इसी चिंता में रहता है वो, और जब भी जाओ किसी तरह की बातें करता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि मुझे ऐसे भक्त का संग नहीं करना है, ये ठीक आदमी नहीं है। आपको कोई बताने नहीं आएगा, आपको खुद समझ जाना चाहिए। इसलिए हम ये कथा इसलिए करते हैं, फिलोसफी इसीलिए बताते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग खुद डेवलप हो जाए कि हमें ऐसे भक्तों से दूर रहना है, ऐसे भक्तों का संग नहीं करना है। और क्या चल रहा है, संस्था के बारे में बोलेंगे और कुछ के बारे में कुछ क्रिटिसाइज करेंगे, तो हमें ऐसे भक्तों से जो है वो बहुत ध्यान रखना चाहिए। लोभी व्यक्ति से, जो बहुत लोभी है, सांसारिक लोभ जिसको बहुत ज़्यादा है, ऐसे व्यक्ति से जो है हमें दूर रहना चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि ऐसे जो लोभी व्यक्ति है उससे भक्तों को बहुत दूर रहना चाहिए। ऐसे वो हो सकता है वो दिखने में भक्त हो, परंतु उसको बार बार उसको लोभ सताता है और हर चीज़ के लिए उसको उसके अंदर लोभ जाग जाता है, तो हमें ऐसे व्यक्ति से जो दूर रहना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महाप्रभु कह रहे हैं जो असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार, कि असत्संग का जो त्याग है यही वैष्णवों का जो है आचरण होना चाहिए। तो हमें सबकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम असत्संग जो है उसका त्याग कर दें, ऐसे लोगों का संग ना करें जो व्यक्ति भक्ति में सीरियस नहीं है। और किसी भी तरह से जो है हम भगवान कृष्ण को सर्व नहीं कर पाएंगे अगर हम डिवोटीज के एसोसिएशन में नहीं हैं तो। भगवान बिना भगवान की कृपा भक्तों की कृपा के जो है हम भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते और भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस बात को बार बार ध्यान में रखना चाहिए। फिर कहा जाता है कि भक्ति सिद्धांत महाराज अपने उसमें लिख रहे हैं, मैं आज पढ़ रहा था अभी, रसाल प्रभु की कृपा से एक बुक मिली थी, उसमें लिखे हैं कि हमें सूडो डिवोटी से, जो नकली भक्त हैं, जो नकली भक्त बन के घूम रहे हैं, उस भक्त से हमेशा सावधान रहना चाहिए। किसी भी भक्त के लिए बहुत डेंजरस है कि ऐसे भक्ति का अगर एसोसिएशन ले रहा है तो हमें इस सूडो डिवोटी से जो है बहुत सावधान रहना चाहिए और दूर दूर रहना चाहिए। आप उसको दूधकार कर बाहर मत करो, परंतु उस भक्त से आप सावधान हो जाओ कि मुझे इस भक्त का संग नहीं करना है, जिसका केवल इंटरेस्ट जो है वो सांसारिक चीज़ों में या बाकी चीज़ों में और उस चीज़ों के लिए है, तो निश्चित रूप से हमें जो है ऐसे भक्तों से बहुत दूर दूर रहना चाहिए। तो इस तरह से जो है उन्होंने कुछ जो सावधानियां हैं कि हमें डिवोटी एसोसिएशन में देखना चाहिए। चेदिन जो शिशुपाल और उसमें के प्रसंग में आता है कि प्रभुपाद लिखते हैं कि हम जब डिवोटी का एसोसिएशन होगा, हालांकि जो नारद जी हैं इससे पहले एक दो श्लोकों में लिखते हैं कि भगवान को जो शत्रुता में जितना लोग व्यक्ति तन्मयता से याद करता है उतना भगवान को जो है उन भक्ति में याद नहीं कर पाता, परंतु प्रभुपाद जो है उसके उसमें परपट में थोड़ा उसको और क्लेरिफाई करते हैं। पर हमें जो है वो शत्रुता की भाव को एडॉप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ हम नहीं कर पाएंगे और हमारे लिए उचित नहीं है। तो क्योंकि रूप गोस्वामी ने हमें बताया है कि अनुकूल भाव में हमें भक्ति करना है, अनुकूले ना कृष्णानुशीलनम, जो अनुकूल भाव में जो है हमें कृष्ण का अनुशीलन करना है, वो भक्ति जो है उत्तमा भक्ति है। तो निश्चित रूप से जो है हमें उस तरह की भक्ति करनी है, क्योंकि जो अब शिशु जो चेदी नरेश है शिशुपाल वो कैसे शुद्ध हो गया, कृष्ण का नाम लेकर केवल, क्योंकि जो कृष्ण का नाम है वो दैट इज मोर पावरफुल देन कृष्णा हिमसेल्फ, स्वयं कृष्ण से ज़्यादा ताकतवर है भगवान का नाम, तभी तो ज़्यादा शुद्ध हो गया। भगवान का नाम ले लेकर जो है वो व्यक्ति शुद्ध हो गया। ये कृपा तो है जो दूसरे लोगों को भी नहीं मिली, जिन्होंने आप देखिए भगवान का दर्शन किए उनको ये कृपा नहीं मिली, लेकिन भगवान को गाली दे दे करके व्यक्ति को वो कृपा मिल गई। शत्रुता के भाव में ही सही, उसके अंदर कितनी तन्मयता थी कृष्ण को याद करने की, और उसने कितनी तन्मयता से जो है कृष्ण को याद किया। इसीलिए दोनों भाव हैं, परंतु हमें प्रभुपाद दिखते हैं कि हमें अनुकूल भाव से जो है भगवान की भक्ति करनी है और अनुकूलता से कृष्ण को याद करना है, और उसके लिए जरूरी है कि हम डिवोटीज के एसोसिएशन में रहें और डिवोटीज का संग लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। यस प्रभु जी, किसका कोई प्रश्न या टिप्पणी?
भगवान आपने बहुत सुंदर भाव से समझाए हैं, उसमें कुछ प्रश्न ये है मेरा कि आपने कईयों के उदाहरण दिया कि क्षण भर की संगति प्राप्त करके उनकी जीवन कल्याणमय हो गया, मगर भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि बहुत जन्म व्यतीत करने के बाद कोई भगवान के संस्पर्श से आते तभी भक्त बनते हैं। तो जब ऐसी कहावत भगवान की है तो इन लोग का क्या ऐसा संगति था पहले क्षण भर के भगवान की इसको संग प्राप्त हो गया, जैसे कुब्जा है, नाग पत्नियां हैं, ये बहुत सारा किया, ये ऐसा क्या किए थे पहले जिनके द्वारा भगवान के साथ साथ इनकी संग प्राप्त हुआ?
वैसे तो मैंने इनकी पिछले जन्म की कहानी नहीं पढ़ी है ना, मुझे पता है इसके बारे में स्टोरी, बट यह है कि निश्चित रूप से उनके जो फिलॉसफी के हिसाब से तो उनके पिछले जन्मों का और पिछले जो है पायस एक्टिविटी इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो गई हैं कि उनके भगवान खुद ही कह रहे हैं कि जो है बहुत ज़्यादा जब ये चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, जब पायस एक्टिविटी इकट्ठी हो जाती हैं, तब किसी को जो है वो भक्तों का या भगवान का संग मिलता है। वो अगले जन्म में है, प्राप्त पुण्य कृताम लोग के, जैसे अब उसमें क्या है कि इस भले सॉरी जो दूसरा श्लोक है उसमें भगवद्गीता में है कि बहुत सारा पुण्य जब इकट्ठा हो जाता है व्यक्ति का, भगवान कह रहे हैं मुझे उस श्लोक याद नहीं आ रहा है, तो वो तो जो है उसको भगवान की और भक्तों की कृपा मिलती है। तो हो सकता है ये पिछले जन्मों का इन सबका मुझे वो नहीं पता है कि एग्जैक्टली कि पिछले जन्म में कुब्जा का क्या था और उसका क्या था, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कुछ न किसी की कृपा रही होगी या उनके पिछले जन्मों का जो है बहुत पायस एक्टिविटी का जो है वो प्रभाव रहा होगा जिसकी वजह से उनको सीधे सीधे भगवान की कृपा मिल गई।
दूसरा प्रश्न है कि भगवान कहते हैं कि हम सब कारण के कारण हैं, सर्व कारण के कारण, चाहे अकाम या सकाम या पुण्य कर्म, जितने कर्म करते हैं लोग सारे कारणों के कारण भगवान है, तो जीव में क्या प्रॉब्लम है, जीव कौन सा कारण के द्वारा ये संसार में ग्रसित हैं और इस तरह भटके हुए हैं, कोई भक्त बनता है कोई नहीं बनता, या कौन सा कारण है, जब सारे कारणों के कारण भगवान ही हैं तो जीव का क्या दोष है?
जीव का दोष ये है कि जीव इच्छा करता है, केवल यही दोष है जीव का। एक्चुअली में जैसे भगवान, अगर भगवान कुछ भी चीज सोच लें तो भगवान की माया शक्ति इतनी फास्ट, भगवान की जो शक्तियाँ इतनी फास्ट हैं कि सेकंड से पहले भगवान की इच्छा होने से पहले हो जाए वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देती है। तो जीव में भी ये शक्ति है, जैसे ही जीव इच्छा करेगा उसको एंजॉय करना है या कुछ भी करना है तो उसको सतो रजोगुण जो तमोगुण जो गुण जो उसके अंदर हैं वो सीधे एक्ट करना शुरू कर देते हैं, और उसको इस इच्छा की वजह से क्या है उसको नाना प्रकार के शरीर और नाना प्रकार की चीज योनियाँ जो हैं वो दी जाती हैं, क्योंकि वो भी कृष्ण की तरह एंजॉय करना चाहता है, इसलिए भगवान उसको एक फैसिलिटी प्रदान करते हैं कि ठीक है तुम कृष्ण तो नहीं बन सकते, मेरे जैसा तो नहीं बन सकते, पर मैं तुम्हें इस तरह की सिचुएशन दूंगा जहाँ तुम भी जो है इस तरह की चीज़ों को एंजॉय कर सकते हो। तो जैसे ही एक्चुअली मैं जीवात्मा का और कोई दोष नहीं है, क्योंकि भगवद्गीता में इसका विस्तृत रूप से चर्चा है, उसका केवल एक दोष है कि वो इच्छा करता है, और जैसे ही वो इच्छा करता है कि जो माया देवी है वो उसको जो है भगवान की जो एक्सटर्नल शक्ति है उससे बाकी सारे काम करवाना शुरू कर देती है। तो ये जो है प्रबल कारण बताया गया है शास्त्रों में कि जीव इच्छा करने की वजह से, क्योंकि इच्छा करना उसका अपना स्वतंत्र है, क्योंकि जीव का केवल एक ही काम कर सकता है, इच्छा कर सकता है, क्योंकि ये शरीर ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, उसका अपना कुछ भी नहीं है, पर जीव की जो स्वतंत्रता है या इच्छा करने की जो इच्छा है वो उसकी खुद की है। तो जैसे ही वो इच्छा करता है उसके ऊपर ये नाना तरह की चीज़ें जो हैं वो मतलब जो व्यर्थ हैं या परेशानियाँ हैं वो चीज़ें उसके ऊपर आने लगती हैं।
तो जीव जो इच्छा करते हैं, जीव की जो स्वतंत्रता है इच्छा करने का, ये स्वतंत्रता भगवान ने दी है कि नहीं?
बिल्कुल,
तो भगवान भी तो कारण है जीव इच्छा करे।
भगवान ने इसलिए दिया है कि भगवान चाहते हैं कि जो व्यक्ति, जैसे आपका आप खुद इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, आपका बेटा आपसे अलग होना चाहता है और बार बार आपसे जिद कर रहा है मैं आपसे अलग रहना चाहता हूँ, तो आप समझाओगे फिर बाद में आप क्या कहोगे, नहीं रहना चाहता, आप क्या कहोगे, भैया जा तेरे को अलग व्यवस्था कर देता हूँ रहे वहाँ पर। तो इसी तरह से जैसे मान लीजिए, और भगवान उसको फिर अपनी तरह पावरफुल भी बनाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी जीवात्मा जब भगवान से अलग होता है तो उसको कोई वो नीचे मनुष्य योनि में या किसी जीव जंतु में भेज देते हैं, वो अपनी तरह से उसको ब्रह्मा या इंद्र या किसी देवता का पोस्ट दिया जाता है, क्योंकि अंबानी अगर अपने बच्चों को अलग करेगा झुग्गी में नहीं देगा, उसको चार दस 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 बीस फैक्ट्रियाँ देगा, दो चार बंगले देगा, 25-50 गाड़ियाँ देगा, फिर कहेगा चल अलग हो जा। तो भगवान जब जीवात्मा को इस तरह से होता है तो उसको अपनी तरह से पावरफुल बना के अलग करते हैं, क्योंकि एंजॉय करना चाहते हैं अलग रहो, और उसके बाद क्या होता है समझा जरूर देते हैं कि भाई इसके बाद परिणाम तुम बिजनेस तुम्हारा चले ना चले वो तुम्हारी जिम्मेवारी है। तो वो जैसे अब जीव जो है वो इच्छा करने के बाद जो जीव की है स्थिति उसकी खराब होने लगती है और धीरे धीरे जो है वो फिर उसका पतन हो जाता है, यही जो है शास्त्र में कारण बताया गया है।
थैंक यू।
हरे कृष्ण। पुण्य करने का मतलब ये नहीं है, माता जी पुण्य करने का मतलब है पायस एक्टिविटी का मतलब, जैसे हम भक्ति में भी पायस एक्टिविटी होती है बहुत सारी, वो पुण्य कर्म में नहीं गिने जाते, जैसे भक्त लोग यहाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं ये पायस एक्टिविटी नहीं है, ये भक्ति है। वहाँ पायस एक्टिविटी का मतलब वहाँ भक्ति है एक्चुअली, ये वाला पुण्य नहीं जो पाप और पुण्य वाला पुण्य नहीं है, नहीं ये नहीं है।
सभी प्रोसेस में मेरी भक्ति सर्वोत्तम प्रोसेस है और कई बार तो मतलब निश्चित रूप से है, लेकिन मुझे कभी कभी हम लोगों को ये पढ़ने को मिलता है और ऐसे मतलब ऐसे पढ़ा भी है कि मैंने एक श्लोक पढ़ा था, एक प्यार पढ़ा था कि तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, ऐसे पढ़ने में आता है कि नंदा भक्ति में सबसे जरूरी जो है भगवान का नाम जप है, या फिर जो पांच भक्ति के मूल अंग हैं उसमें नाम संकीर्तन है। तो हालांकि सभी बहुत हैं, लेकिन एनालिटिकली देखा जाए तो क्या वो भक्तों का संग है या नाम संकीर्तन है, और इसमें कैसे समझे इस बात को? मतलब
नाम संकीर्तन तो श्रेष्ठ है ही है, और नाम संकीर्तन हम कर नहीं पाएंगे बिना भक्तों के संग के। कोई व्यक्ति ज़्यादा दिन तक नाम संकीर्तन करेगा नहीं अगर वो भक्तों के संग में नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काफ़ी सारे भक्तों को होगा। जब वो भक्तों से दूर रहते हैं तो धीरे धीरे जो चैंटिंग है वो उसमें डिफरेंस, ऐसा नहीं कि बंद कर देते, वो डिफरेंस आने लगता है, और धीरे धीरे क्या है कि वो वही पंखा वाली स्विच एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद, या आपने स्विच बंद कर दिया तो ऐसा नहीं कि पंखा बंद हो जाएगा एकदम से, वो धीरे 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 जो है वो बंद हो जाता है। हम डिवोटीज की एसोसिएशन में जो है नो डाउट इस युग धर्म है नाम संकीर्तन, और नाम संकीर्तन करना ही है, और नाम संकीर्तन बिना एसोसिएशन के हम कर नहीं पाएंगे हमेशा के लिए और सदा सना के लिए। ये है मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग।
तो इसका मतलब ये हुआ कि वैसे जो सबसे श्रेष्ठ है वो नाम संकीर्तन है, लेकिन वो भक्तों के संग के बिना नहीं कर सकते।
हाँ ऑब्वियसली नाम संकीर्तन तो भक्ति नवधा भक्ति के जो 64 अंगों में से सबसे टॉप मोस्ट है, और सब कुछ जो है वो क्रॉस इसी का अंग मतलब वो है, इस युग का धर्म भी है वो नाम संकीर्तन के बिना। ये सब जो हम चीज़ें करते हैं भागवतम श्रवण ये सब क्लास क्यों करते हैं, केवल इसलिए कि नाम संकीर्तन करे व्यक्ति। और नाम संकीर्तन का भी प्रमुख उद्देश्य क्या है, वो हमेशा कृष्ण को याद रखे। नाम संकीर्तन का मतलब कृष्ण, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। अगर कोई नाम संकीर्तन के बिना कृष्ण को याद रख रहा है तो बहुत बड़ी बात है कि बहुत एलिवेटेड डिवोटी है। और ऐसा एक बार हुआ था प्रभु हमारे वृंदावन मंदिर के बाहर जो है एक व्यक्ति थे, वो डिवोटी था मतलब आप समझ लीजिए, बट इस्कॉन से उसका कोई रिलेशन नहीं था, बट इस्कॉन के जो है मंदिर के बाहर दीवार के पास जो है हमेशा महामंत्र जपता रहता था, बहुत रोता था और जपता रहता था हमेशा। तो कई बार जो है प्रभुपाद के डिसाइपल वहाँ से निकलते थे जाते थे, तो एक बार किसी ने बोला प्रभुपाद को जो बाहर व्यक्ति रहता है वो हमेशा इस तरह से चीखता है और भगवान का नाम जपता रहता है, तो प्रभुपाद ने कहा तुम उसकी नकल नहीं कर सकते, वो बहुत एलिगेंटेड डिवोटी है, वो हमेशा रात को भी जो है वो लोग कहते कि रात को भी 2 बजे उठो तो कृष्ण को याद कर रहा होता है, उसको माला करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद ने बोला प्रभुपाद के अंतिम दिनों में ऐसा नहीं कि प्रभुपाद किसी ने नहीं देखा प्रभुपाद माला करते थे, आपको कैसे ये पता नहीं होगा। तो उनका प्रभुपाद जो है जब खास करके जब वृंदावन में बेड रिडन थे तो प्रभुपाद जो है वो चैंटिंग नहीं करते थे। तो एक डिवोटी ये उसमें आता है इसमें टीके जी डायरी में जो है, तो उसमें प्रभुपाद जी ने जो है फिर एक व्यक्ति ने बोला ऐसे कुल प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद आप मतलब चैंटिंग करते हुए नहीं देखता आपको मतलब ऐसे जैसे, तो प्रभुपाद ने उसको बोला कि इस पता नहीं पीठ या छाती पर बोला कि यहाँ पर काम रखो, तो जैसे उसने रखा तो उसको जैसे अंदर से आवाज़ सुना दिया हरी कृष्ण कृष्ण, तो उछल पड़ा वो व्यक्ति, मतलब वो कह रहा कि ये मतलब वो समझ में आया कि ये कैसे ये क्या हो रहा है। तो वो अपना संस्मरण लिखते हैं वो कि मतलब ऐसे जो व्यक्ति वो ऐसा हो जाता है तो उसको ये नहीं दिखाने के लिए उसको करने की आवश्यकता नहीं होती, तो बैठ के 16 माला का जप करेगा और ऐसे करेगा, क्योंकि अब वो इस 3 नियमों से परे हो चुका है। ये सब हमारे लिए है कि हम, लेकिन निश्चित रूप से नाम जप जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। ये बाकी जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो बाकी जितने भी सारी चीज़ें हैं, या चाहे भक्तों का एसोसिएशन है, या तपस्या करना है, फास्टिंग करना है, भागवतम सुनना है, ये सब उसके सपोर्टिव हैं, कम्प्लीमेंट्री हैं। एक्चुअल तो नाम संकीर्तन ही है, और वही करने के लिए जो है वही सर्वश्रेष्ठ है, वही करने के लिए हम यहाँ करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो शिशुपाल ने द्वेष पूर्वक भगवान का चिंतन किया उससे उनका शुद्धि हुई, मतलब उनका चित्त शुद्ध हो गया द्वेष पूर्वक चिंतन से, फिर वो शुद्धि और गोपियों की शुद्धि या शुद्ध उस शुद्धि उन दोनों की शुद्धि का क्या भेद है?
कोई भेद नहीं,
शुद्धि सेम है, द्वेष पूर्वक भी भजन चिंतन करने से। लेकिन रसास्वादी मैं क्लियर करना पूछना चाहता हूँ कि जो रसास्वादन गोपियों को हुआ, क्या वो रसास्वादन शिशुपाल को हुआ?
नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं, क्योंकि अनुकूल भाव में नहीं कर रहा था।
हाँ जी,
गोपियाँ अनुकूल भाव में कर रही थी कृष्ण के, और वो प्रतिकूल भाव में कर रहा था। बट शुद्धिकरण दोनों का एक जैसा था,
चित्त शुद्ध दोनों का सेम।
अच्छा, जो स्थान यशोदा को मिला यही स्थान पूतना को भी मिला। अगर ये तभी तो ये समदर्शी जो चैप्टर है इसी का है। भगवान इस चीज़ में किसी का डिफ्रेंशिएट नहीं करते।
लेकिन इसमें शिशुपाल को मुक्ति की प्राप्ति हुई, सायुज्य मुक्ति।
हाँ, बट वो नेक्स्ट जन्म में फिर भगवान के धाम भी जाता है। वो तो ये सायुज मुक्ति की प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं है। सायुज मुक्ति हम लोग समझते हैं, हम डिवोटी बन के हम बार बार सुनते हैं, हमें लगता है बड़ा चीप है ये, इतना आसान नहीं है कोई स्वर्ग को भी चले जाना। आज के समय में स्वर्ग जाना भी आसान नहीं है, सायुज मुक्ति प्राप्त करना तो बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े रोगी ऋषि मुनि महर्षि इनको यो सायुज मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, सब लोग सायुज मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। सायुज मुक्ति प्राप्त करना भी कोई चीप नहीं है, छोटा नहीं है। हम भक्त होंगे तो हमें लगता है कि बहुत छोटी बात है, बहुत ऊंची चीज़ है सायुज मुक्ति भी, बहुत ऊंची चीज़ है, बहुत ऊंची चीज़। तो अगर पांच प्रकार की जो मुक्तियाँ हैं, अगर शिशुपाल को उसमें से एक मुक्ति प्राप्त हो रही है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्रतिकूल भाव में रह करके भगवान का चिंतन करके व्यक्ति भगवान के शरीर में जा रहा है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
तो प्रभु जी, क्या एक बार सायुज्य मुक्ति प्राप्त होने के बाद वो कभी भजन कर पाता है, वो रसास्वादन गोपियों जैसा कर पाएंगे?
नहीं प्रभु जी, वो नहीं होता। एक्चुअली में क्या होता है कि प्रभुपाद लिखते हैं कई जगह में, जो सायुज मुक्ति प्राप्त करता है उसके गिरने का डर होता है, संसार में गिर सकता है। गिरता है ऐसा नहीं लिखा हुआ है,
गिरने की
जब भी आप लिखोगे गिर सकता है, ही मे फॉल, ये नहीं लिखा कि फॉल्स। ये होगा तो सायुज मुक्ति का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर मुक्ति में जाके भी किसी का फॉल डाउन हो जाएगा तो मुक्ति का कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर तो भगवान की मुक्तियों का कोई मतलब नहीं रह गया। मुक्ति से फॉल डाउन नहीं होता किसी का भी। बट प्रभुपाद लिखते हैं हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर जो है वहाँ कुछ करने के लिए नहीं होता उसके पास उस मुक्ति में। तो कई बार उसके मन में ये आता है कि मैं भी जो है, तो फिर कई बार क्या होता है, ये सायुज मुक्ति वाला जो व्यक्ति है दोबारा नीचे पे आकर प्रयास करके दूसरी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है।
अच्छा,
सालों के सारूप सामी पर शास्त्री जो चार और मुक्तियाँ हैं उनसे और किसी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। भगवान नारायण के धाम में जितने भी लोग रहते हैं इन्हीं मुक्तियों में रहते हैं, इन्हीं चार में से किसी न किसी एक मुक्ति में रहते हैं। जो सायुज मुक्ति में होता है वो भगवान के शरीर में होता है व्यक्ति, वो एक्चुअली में जो एफलजेंस है भगवान के उसमें वृद्धि करता है। वो जो भगवान का शरीर की जो कांति निकलती है जिसको हम ब्रह्म तेज बोलते हैं, वो जो जीवात्मा है उस तेज को बढ़ा देता है। जैसे एक जीवात्मा जाएगा तो उस तेज और बढ़ जाएगा भगवान का, एक और जीवात्मा गया सायुज मुक्ति में और तेज बढ़ जाएगा वो, एक और गया तो एक और तेज बढ़ जाएगा वो, इस तरह से होता है। वो तेज जो है और बढ़ता रहता है क्योंकि भगवान का ही तेज है, वो भगवान से निकला था वापस आ गया तो और तेज बढ़ गया इसका। इसलिए जो है सायुज मुक्ति वाला ये नहीं है कि गिरता ही है, पर गिर सकता है। प्रभुपाद दिखते हैं कि गिर सकता है व्यक्ति, ये होता है।
धन्यवाद।
हरे कृष्ण
कृष्ण, हरे कृष्ण।
श्री प्रभुपाद की।